आज कल
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम फिलिस्तीनी मुद्दे और डील ऑफ सेंचुरी की शैतानी चाल पर चर्चा करेंगे। मरियम मेहरदादी और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
डील ऑफ सेंचुरी के हवाले से पिछले कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि फिलिस्तीनियों से साठगांठ करने के लिए कई समझौते हुए, किंतु उनमें से कोई एक भी समझौता सफल नहीं हो सका। 13 सितंबर वर्ष 1993 में विश्व की 3000 हस्तियों की उपस्थिति में ज़ायनी शासन और फिलिस्तीनी प्रशासन के बीच अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के सामने ओस्लो समझौता हुआ। उसके बाद वर्ष 1999 में एहूद बराक की सत्ता में पहुंचने के बाद मिस्र के शरमु शेख में फिलिस्तीनी प्रशासन और ज़ायनी शासन के बीच वाई रिवर 2 या शरमु शेख समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये दोनों समझौते भी सफल नहीं हो सके।
जहां एक ओर फिलिस्तीन पर सौदेबाजी हो रही है, वहीं फिलिस्तीन की जनता पूरी ताकत के साथ इसे नकार रही है। फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास के एक वरिष्ठ नेता ने ज़ायनी षड्यंत्रों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि
फिलिस्तीन के सभी राजनीतिक गुट एक ही ध्वज के नीचे एकत्रित हैं। डील ऑफ सेंचुरी योजना ने हम फिलिस्तीनियों को डोनाल्ड ट्रंप और कुशनर के मुकाबले में अधिक एकजुट किया है।
जी हाँ, फिलिस्तीन का सौदा करने वाले यहीं पर खामोश नहीं बैठे। उन्होंने सन 2000 में कैंप डेविड में मध्य पूर्व की तथाकथित शांति वार्ता का क्रम जारी रखा। इस वार्ता में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ज़ायनी शासन के तत्कालीन प्रधानमंत्री एहूद बराक और फिलिस्तीनी प्रशासन के मुखिया यासिर अराफात ने भाग लिया। बैतुल मुकद्दस पर मालिकाना हक और इस महत्वपूर्ण शहर को अपनी अपनी राजधानी बनाने के लिए फिलिस्तीनी और ज़ायनी दोनों ही प्रतिनिधिमंडलों के प्रयास, यही वो विषय थे जिस पर दोनों पक्षों ने कैंप डेविड में अधिकतर चर्चा की। इस बैठक में फिलिस्तीनी प्रशासन के प्रमुख यासिर अराफात ने बैतुल मुकद्दस की राजधानी वाले एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के गठन का अपना संकल्प दोहराया। उन्होंने कैंप डेविड में अमरीकी राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए कहा था कि फिलिस्तीन के उस नेता ने अभी अपनी माँ की कोख से जन्म ही नहीं लिया है जो बैतुल मुकद्दस को भूल जाए।
रोचक बात यह है कि अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ज़ायनी प्रधानमंत्री यहूद बराक और फिलिस्तीनी प्रशासन के प्रमुख यासिर अराफा जब कॉन्फ्रेंस रूम में जा रहे थे तो उन्होंने पत्रकारों को एक ग्रुप फोटो दी और पत्रकारों ने उनसे सवाल किया। यहाँ पर ज़ायनी प्रधानमंत्री और फिलिस्तीनी प्रशासन के प्रमुख यासिर अराफात खामोश रहे, किंतु बिल क्लिंटन ने इन दोनों की ओर से कहा कि हमें अभी कुछ नहीं कहना है, हम वार्ता के लिए जा रहे हैं और वार्ता में जो फैसला होगा उससे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा।
We pledged to each other we would answer no questions and offer no comments. So I have to set a good example.
वार्ता से पहले हमें कुछ नहीं करना है और न ही किसी सवाल का जवाब देना है। ये एक अच्छी शुरुआत है और इससे अच्छा नतीजा बरामद होने की उम्मीद है।
यहाँ पर बात खत्म हो गई और तीनों नेता कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़े। सबसे पहले अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन कमरे में दाखिल हुए और उसके बाद फिलिस्तीनी प्रशासन के प्रमुख यासिर अराफात और ज़ायनी प्रधानमंत्री एहूद बराक में पहले आप का जो सिलसिला शुरू हुआ वो काफ़ी देर तक चलता रहा।
ये सिक्के का दूसरा रुख था। इतिहास गवाह है कि ईरान में जब इस्लामी क्रांति सफल हुई और इस्लामी क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी ने फिलिस्तीनी प्रशासन के प्रमुख यासिर अराफात को ईरान का न्योता दिया। ईरान में यासिर अराफात का भरपूर स्वागत हुआ और उन्होंने इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए ईरान और इमाम खुमैनी की सराहना की।
It changed completely the whole strategic
policy in this area. Upside down completely. We have to remember what Berzinski have mentioned. Bye-bye to PLO.
क्षेत्र की रणनीतिक पूरी तरह बदल चुकी है. हम ईरान की इस्लामी क्रांति और उसके नेता के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी मदद की और सत का साथ दिया.
बहरहाल कैंप डेविड बैठक हुई और आखिरकार अमरीकी अधिकारियों ने आधिकारिक रूप से इस वार्ता की विफलता की स्वीकारोक्ति की. यह बैठक दो सप्ताह तक परिणामहीन उठा पटक के बाद आखिरकार समाप्त हो गई और उसने सिद्ध कर दिया कि ज़ायनी शासन अपनी नीतियों से पीछे हटने को तैयार नहीं है और यहाँ तक कि पूर्वी बैतुल मुकद्दस को भी स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश की राजधानी स्वीकार करने को वो तैयार नहीं है. इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच निरंतर तथाकथित शांति समझौते को नकारते हुए इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने कहा था कि ये सुलह नहीं बल्कि कलंक है.
भाइयों और बहनों, आज इस्लामी जगत को हमारी एकता और एकजुटता की आवश्यकता है. एक आवाज में, एक मंच पर, हर वो आवाज जो मतभेद फैलाने और आपसी विवादों को हवा देने के लिए हो, उससे इस्लाम नाराज होता है.
कैंप डेविड वार्ता की विफलता के बाद मार्च 2002 में अरब संघ के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक लेबनान की राजधानी बैरूत में आयोजित हुई. इस बैठक में फिलिस्तीनियों और ज़ायनियों के बीच झड़पें समाप्त करने की योजना पेश की गई. इस योजना को फिलिस्तीनी प्रशासन के तत्कालीन प्रमुख यासिर अराफात की अनुपस्थिति में पास कर लिया गया. इस योजना के अनुसार ज़ायनी शासन को 1967 की सीमाओं तक पीछे हटना होगा और इसके मुकाबले में अरब जगत भी इसको आधिकारिक रूप से देश का दर्जा देंगे, किंतु ज़ायनी शासन ने वर्ष 1967 की सीमाओं से पीछे हटने से इनकार कर दिया और कहा कि वो फिलिस्तीनी विस्थापितों की वापसी के हक को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करेगा. या यूं कहा जाए कि इसराइल ने अरबों की योजना का पूरी तरह से विरोध कर दिया.
मामला यहीं पर नहीं रुका. शांति के लिए रोड मैप नामक षड्यंत्रकारी योजना वर्ष 2002 में अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस और संयुक्त राष्ट्र संघ के सुझाव पर पेश की गई. इसका लक्ष्य फिलिस्तीन और इसराइल दो देशों का एक साथ गठन है. इस योजना में फिलिस्तीनी गुटों का निरस्त्रीकरण और बंदियों की आज़ादी भी शामिल थी. इस योजना को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में पास किया गया. इन प्रयासों का परिणाम जिनेवा संधि के रूप में सामने आया. 50 पृष्ठों पर आधारित ये 2.5 वर्षों की गुप्त वार्ताओं का परिणाम था. इन वार्ताओं में इसराइल की ओर से ज़ायनी शासन के पूर्व न्याय मंत्री यूसी बेलिन ने, जबकि फिलिस्तीनी प्रशासन की ओर से फिलिस्तीन के पूर्व खुफिया विभाग के मंत्री यासिर अब्दुरब्बो ने भाग लिया.
पहली दिसंबर 2003 को दोनों पक्षों ने जिनेवा में समझौते पर हस्ताक्षर किए, किंतु ज़ायनी शासन ने कुछ समय बाद जिनेवा योजना को पूरी तरह रद्द कर दिया और इस योजना को इसराइल को कमजोर करने का प्रयास करार दिया.
बहरहाल वर्तमान समय में इस्लाम के विरुद्ध अमेरिका और ज़ायनी शासन के षड्यंत्रों का क्रम जारी है, इसीलिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाهیه.
برادران عزیز، خواهران عزیز، دنیای اسلام احتیاج دارد به یک صدایی.
بھائیو اور بہنو، آج اسلامی جگت کو ہماری ایکتا اور ایک جٹتا کی آوشکتا ہے. ایک آواز میں، ایک منچ پر، ہر وہ آواز جو مدبھید پھیلانے اور آپسی ویوادوں کو ہوا دینے کے لیے ہو، اس سے اسلام ناراض ہوتا ہے.